ये आकाशवाणी है। अब आप नईम अख्तर से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। झारखंड में पहले चरण की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। 25 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कई राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। श्री कुमार ने कहा कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने दोनों राज्यों के मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। सांसद अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उमर अब्दुल्ला कल दिन में 11:30 बजे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के आह्वान करते हुए सुरक्षा, सम्मान और समानता को प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचे की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। श्री प्रधान ने कहा कि ये केंद्र अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और जन कल्याण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये केंद्र नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि ये भारत में उद्योग और निवेश में बढ़ोतरी में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। श्रीमती सीतारामन ने आज नई दिल्ली में मंच के अध्यक्ष जॉन टी चैम्बर के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज अल्जीरिया के अल्जीयरस में सीदी अब्देलाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोले विश्वविद्यालय ने राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये उपाधि मेरे देश का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत अनादिकाल से समृद्धि और शांति के लिए खड़ा है। सरकार ने 234 नए शहरों में 730 निजी रेडियो चैनलों की शुरुआत के लिए निजी FM रेडियो चरण के तीसरे बैच की ई नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया है। चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य ट्राई की अनुशंसित 2022 की कीमतों के अनुसार है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के हिंसाग्रस्त माहसी क्षेत्र में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जिले में इंटरनेट सेवाएं कल तक बंद रहेंगी। हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। हत्या में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना चीनी ताइपे की पाई यू पू से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।